के पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, वह हम लोगों को जन्मजात प्राप्त है। कर्म करने की सामर्थ्य मिली है, कार्य क्षमता, विचार करने की सामर्थ्य मिली है और प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक विश्वास करने की सामर्थ्य मिली है। कर्म ज्ञान और प्रेम, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति, ये तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ सभी भाई बहनों को जन्म जात प्राप्त रहती है। जीवन दाता जन्म दाता ने साधन सामग्री से संपन्न करके हम लोगों को संसार में भेजा है। कार्य क्षमता का सही उपयोग हो गया होता तो हमारे भीतर से करने का राग मिट गया होता, करने का राग मिट गया होता तो जन्म मरण की बाध्यता खत्म हो गई होती। आज जिस दशा में हम लोग अपने को पाते हैं, उस दशा का अध्ययन करिए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनेक बार हम लोगों को शरीर धारण करके संसार में रहने का मौका तो मिला, लेकिन शारीरिक बल के द्वारा जो कार्य क्षमता मिली, उस कार्य क्षमता का हमने सही उपयोग नहीं किया होगा। अगर हमने उसका ठीक उपयोग किया होता तो राग मिट गया होता, फिर जन्म लेकर के इस धरती पर बैठने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। तो हम सब लोग सशरीर यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक हमने कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है, इसलिए कुछ करना शेष रह गया है। पूरा उपयोग करने का अर्थ क्या है? शरीर को लेकर संसार में रहते हुए मनुष्य होने के नाते, साधक होने के नाते, शांति स्वाधीनता और प्रेम पाने के जिज्ञासु होने के नाते अपने को क्या करना चाहिए, तो महाराज जी ने सलाह दी कि दुनिया में रहते हुए ममता के संबंध से ऊपर उठ जाओ, जगत के नाते, आत्मा के नाते, परमात्मा के नाते सभी को अपना मानो और सभी को अपना मानने का ये बहुत ही सहज स्वाभाविक परिणाम निकलेगा कि किसी भी दुखी को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होगा, करुणा उपजेगी उसमें और किसी भी सुखी को देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो दुखी मात्र के दुख से करुणित होना और सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना, यह मनुष्यता का पहला लक्षण बताया महाराज ने। इस दुनिया में रहने का यह पहला ही नियम है कि भाई दुखी मात्र के दुख से द्रवित होना चाहिए, हृदय को करुणित होना चाहिए और सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना चाहिए। तो दुख देख कर दुखी होना और सुख देख कर प्रसन्न होना हम लोगों को आता है कि नहीं? ठीक, आता है, लेकिन उसमें गलती क्या है? तो गलती ये है कि जगत के नाते सभी को हम अपना नहीं मानते, आत्मा के नाते सभी निज स्वरूप है ये भी हम नहीं मानते और परमात्मा के नाते सभी मेरे प्यारे के प्यारे हैं ये भी नहीं मानते, तब क्या मानते हैं? अब देखिए अपनी भूल अपने को दिखाई देगी। जीवन का जो दार्शनिक सत्य है, फिलोसॉफिकल ट्रुथ, उस पर से तो दृष्टि हट गई। सारा जगत एक इकाई है, एक समष्टि शक्ति के द्वारा संचालित है, तो सारा जगत शरीर की दृष्टि से एक है, इस बात को हम लोग भूल गए। सभी निज स्वरूप हैं, सभी अपने आत्मा के स्वरूप में ही है, तो निज स्वरूप के नाते, आत्म स्वरूप होने के नाते सभी अपने हैं, इस बात को भी हम भूल गए। और सारी सृष्टि के बनाने वाले एक अकेले परमात्मा है, तो सभी प्राणी उनको प्रिय हैं, सभी प्राणी उनके अपने हैं, तो प्यारे प्रभु के नाते सभी अपने हैं, ये भी हम भूल गए। तो भौतिकवाद के सत्य को भुला दिया हमने, अध्यात्मवाद के सत्य को भुला दिया हमने, ईश्वरवाद के सत्य को सामने से हटा दिया हमने, और सामने किसको रख लिया, तो देहवाद को। देहवाद सामने आ गया। क्या हो गया कि ये तो इस शरीर से पैदा किए हुए बच्चे हैं, तो इसलिए इनके दुख से दुखी होते रहो, इनके सुख से प्रसन्न होते रहो, और इनको सुखी करने के लिए अन्य बच्चों को, अन्य के शरीरों को दुख देने में भी ना हिचको। तो विकास होगा कि ह्रास होगा, ह्रास होगा, विकास हो नहीं सकता, क्योंकि यह सत्य नहीं है। शरीर से माना हुआ संबंध है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है कि जिन शरीरों के कारण से मैंने संबंध माना, वो माने हुए शरीर के संबंधी सदा के लिए मेरे साथ हैं, नहीं है। जिन शरीरों के संबंध से तभी मैंने किसी को माता पिता करके माना था, वे माता पिता अपने पास सदा के लिए हैं, नहीं है। जिन बच्चों को शरीर से पैदा करने के कारण अपना बेटा बेटी करके हमने माना था, उनके साथ सदा के लिए संयोग निभ गया, नहीं निभ गया। तो आँखों से दिखाई देता है, बुद्धि से समझ में आता है कि शरीर के माध्यम से माना हुआ संबंध नित्य संबंध नहीं है, तो इसको प्रधानता दे देना। तो असत को प्रधानता दे दिया मैंने, तो ममता का दोष पैदा हो गया, राग और द्वेष पैदा हो गया। देह के संबंध से जिनको मैंने अपना माना, उनके प्रति मेरी आसक्ति पैदा हो गई, और उनकी आसक्ति के कारण दूसरों से द्वेष पैदा हो गया, तो भीतर में ममता का दोष पैदा हो जाए और राग द्वेष का विकार पैदा हो जाए, तो सत्य का दर्शन होगा, इसलिए नहीं होता है। क्या होता है कि जिनको अपना माना, उनका दुख तो हमको व्याकुल कर देता है, और जिनको अपना नहीं माना, उनका दुख देखते हुए भी हम आराम से खा लेते हैं और सो जाते हैं, और जिनको हमने अपना माना, उनके सुख को देखकर तो प्रसन्नता हो जाती है, और जिनको अपना नहीं माना, उनके सुख सुविधा को देख करके भीतर में हिंसा पैदा हो जाती है। तो ये मनुष्यता का लक्षण है, ठीक नहीं है। अगर ये दोष जीवन में बनाए रखेंगे तो किसी जप तप के द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। तो जरूरी कि कौन सी बात है, जप तप का आरंभ करना जरूरी है, कि जो मनुष्यता का लक्षण नहीं है, जो दोषों विकारों के रूप में मुझको मेरे सत्य से दूर करने वाली बातें हैं, उनको अपने में से निकालना ज्यादा जरूरी है। पहला कदम क्या है, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काम करने की शक्ति जो मिली है, कर्म का महत्व जो मनुष्य के जीवन में है, उस कर्म को ज्ञान से प्रकाशित करके, प्रेम के भाव से कोमल करके, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा ही किया हुआ कर्म तुमको करने के राग से मुक्त कर दे। ये एक खास बात हो गई, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब आप सोच करके देखिए, महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, ये जो बिल्ली है, तो बिल्ली भी जिन बच्चों को पैदा करती है, तो दांतों से बड़ी कोमलता से उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ऐसा हम लोगों ने सुना है कि 7 बार जगह वो बदलती है तो उसके बच्चों की आंखें खुलती हैं। तो उन्हीं दांतों से, जो उसके बड़े ही हिंसक दांत हैं और तीखे दांत हैं, उन्हीं दांतों से अपने पैदा किए हुए बच्चों को तो बड़ी कोमलता से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और वही बिल्ली चूहा दिख जाए तो उन्हीं दांतों से कितने तीखे से उसके गले में चुभा देती है, कि उसकी उसकी हिंसा भी हो जाती है और उसको चिबा करके खा करके अपना पेट भी भर लेती है। तो हिंसक जंतु है और उसके बड़े तीखे दांत हैं, लेकिन जिन बच्चों के प्रति उसकी ममता है कि ये मेरे बच्चे हैं, उनको तो बड़ी कोमलता से छूती है। और जिन चूहों को मार करके खा जाना चाहती है, उन चूहों पर उन्हीं दांतों से बड़े तीखे आक्रमण करती है। तो अपना जिसको मानोगे उसके प्रति कोमलता रखोगे, पराया जिसको मानोगे उसके प्रति कठोरता रखोगे, तो ये लक्षण तो पशु का है, बिल्ली का है, यह लक्षण मनुष्य का तो नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए ना। तो अब देखो कि हम लोग भी साधक हो करके, सचेत हो करके, विचारक हो करके, सत्संगी हो करके, ईश्वर विश्वासी हो करके, अगर अपने पराये का भेद रखेंगे, राग और द्वेष के दोष में बंधे रहेंगे, तो सत्य का दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो पहले आंख बंद करके, ध्यान लगा करके, भगवान इष्ट के विग्रह पर दृष्टि गड़ाने की चेष्टा करने की जरूरत है कि पहले दार्शनिक सत्य को अपना करके अपने भीतर से राग द्वेष मिटाने की जरूरत है, ठीक है ना? तो इस राग द्वेष के रहते हुए सत्य का दर्शन नहीं होता है, सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, चित्त की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने मनुष्यता का पहला कदम बताया कि भाई दुखी मात्र को देखकर करुणित होना और सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना, इसको मनुष्यता का पहला लक्षण मानो और ऐसा अपना स्वभाव बनाओ। तो गलत बात को हम पकड़े रहेंगे तो सही बात का अनुभव हो नहीं सकता, और गलत बात को छोड़ना चाहेंगे तो गलत बात का कोई अपना मौलिक आधार नहीं होता। जो बात गलत है, सही नहीं है, उसको त्यागने में अपने लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, देर नहीं लगेगी। और जो भौतिकवाद का सत्य है, जो अध्यात्मवाद का सत्य है, जो ईश्वरवाद का सत्य है, उसको अपनाने में अपने को किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। इस दृष्टि से अगर आप अपनी साधना को सफल करना चाहते हैं, तो कर्म के क्षेत्र में अपने को शुद्ध बनाइए। ये हम लोगों का पहला हिस्सा हो गया। अब उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि इसमें बड़ा भारी वैज्ञानिक सत्य ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब करुणा का रस आता है, तो उसके भीतर से सुख भोग की रुचि खत्म हो जाती है। ये वैज्ञानिक सत्य है। सुख भोगना अलग बात है, वो तो भाग्य के विधान से किसको कितना मिलेगा वो कौन कह सकता है, लेकिन सुख भोग की रुचि को रखना, इसमें अपने लोगों को बड़ा घाटा है। क्या घाटा है कि रुचि भीतर भीतर बनी रहती है, तो सुख मिल गया तो हम सुख के हाथों बिक गए। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ये जो अपना सत्य स्वरूप था वो तो एक किनारे रह गया, और सुख भोग की रुचि की पूर्ति में हम सुख के हाथ बिक गए तो दुख के भागी बन गए। और अगर रुचि है और उसकी पूर्ति नहीं होती तो अभाव और नीरसता में फंस गए। तो यह एक बड़ा भारी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो व्यक्ति भीतर भीतर जितनी नीरसता की पीड़ा को पाता है, वो अधिक से अधिक काम वासना के फेर में पड़ा रहता है। जितनी नीरसता सताएगी उतनी काम वासना उग्र होगी। ये रिसर्च किया हुआ परिणाम स्लम एरिया में क्रिमिनल्स पैदा होते हैं ज्यादा, तो साइकोलॉजी ऑफ क्राइम ये सब हम लोगों को पढ़ाया जाता था, तो उसने बताया कि वे लोग जिनको शारीरिक सुविधाएं कम है और उनको अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया महल हैं और उसमें बढ़िया बढ़िया सुगंधित भोजन बन रहे हैं, सुगंधी हवा में फैल रही है और खाने की रुचि और सुख से रहने की रुचि अपने भीतर है और मिलेगी नहीं, तो अभाव में पड़े हुए नीरसता में पड़े हुए लोगों के यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है। रिसर्च का परिणाम मैं आंकड़े सुना रही हूँ आपको, कोई कल्पना की बात नहीं बता रही हूँ, अंदाजी बात नहीं कर रही। तो रिसर्च के परिणाम में ये देखा गया कि उनके यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होती है और बहुत सी बातों के भीतर एक कारण यह बताया गया कि आदमी के जीवन में अधिक अधिक नीरसता रहती है तो अधिक अधिक काम वासना से वो पीड़ित होता रहता है, उसमें काम वासना उग्र होती है। तो अब साधक के स्टैंडर्ड पर आ जाइए, आप साधक हैं, आप शांत रहना पसंद करते हैं, आप मन को निश्चिंत निर्विकल्प अचिंत बनाना पसंद करते हैं, तो जो जो आपकी चेष्टाएं हैं कि मुझे शांति मिले, निर्विकल्पता मिले, निश्चिंतता मिले, अचिंत हो जाऊं मैं, और हमारी वृत्तियां जो हैं वो बाहर से अंदर की ओर जा करके नित्य योग तत्व बोध परम प्रेम में जुट जाएं, ये लक्ष्य है ना जी? ये भाषा तो समझ में आती है, बहुत सुनी हुई है आपकी, तो ये जो हमारा लक्ष्य है इस लक्ष्य की पूर्ति में आप अपना अपना दिल टटोल कर देखिए कि संसार के संयोग जनित सुख की रुचि के अलावे और कोई बाधा है? और कोई बाधा नहीं है। इस सुख की रुचि हमको, हमारी वृत्तियों को, हम उनको पकड़ के अंदर ले जाना चाहते हैं और वो बाहर बाहर दृश्य जगत की ओर भटकती रहती हैं। इस संघर्ष में साधक का बहुत सा समय निकल जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने सलाह क्या दी कि भाई तुम घरदारी हो, बाल बच्चेदार हो, गृहस्थ हो। कल परसों एक माँ मिली थी ना, तो कहने लगी कि अरे मैं तो बाल बच्चेदार हूँ, गृहस्थी वाली हूँ, रोज रोज तो आती नहीं हूँ, माता जी आज आ गई हूँ तो मुझको पूजा कर लेने दो। तो बाल बच्चेदार होना, घर गृहस्थी होना सत्संग से दूर होने का लाइसेंस है क्या? नहीं है ना। तो मानव सेवा संघ के नाम से स्वामी जी महाराज ने जो सत्य हम लोगों के सामने रखा वो इस प्रकार से रखा कि भाई आप बाल बच्चेदार हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, संसार के चलाने वाले हैं, शासन के सूत्रधार हैं, जन समाज की सेवा करने वाले हैं, ये सब सारी हम लोगों की मान्यताएं हैं। तो इनको अगर साधन रूप नहीं बनाओगे तो इसमें से निकलने की सामर्थ्य कभी आएगी? नहीं आएगी। इसलिए इसमें से निकलने की सामर्थ्य आपको चाहिए, और चाहिए तो आज की जो आपकी मान्यता है उसी में आप अपने को साधक स्वीकार करिए, और साधक की स्वीकृति में सुख दुख को फिट करिए। समाज में रहते हुए, समाज का, संसार का, परिवार का काम करते हुए आप कह सकते हैं कि मुझको सुख दुख छूटा नहीं है? नहीं कह सकते हैं भाई। सुख भी अपने को छू रहा है, दुख भी अपने को छू रहा है, सुख दुख का स्पर्श हो रहा है। तो सुख दुख का स्पर्श जो अपने को हो रहा है इसी दशा को साधन रूप बनाइए। कैसे बनाइएगा कि अभी तो चार बच्चों के दुख से दुख हो रहा था, अब तो हम साधक होने के नाते, प्यारे प्रभु के नाते, सब बच्चों को उनकी फुलवारी के पुष्प मानेंगे और किसी बच्चे का दुख देख करके हमारे हृदय में करुणा उपजेगी, किसी बच्चे को हंसता खेलता देख करके मेरा मातृ हृदय है तो हंसते खेलते किलकारी मारते बच्चों को देख करके मेरे भीतर प्रसन्नता होगी। तो इसमें कोई पैसा खर्च होने का है? महंगाई से कोई तंगी आने वाली है? अगर इतना भी हृदय को उदार बनाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, तो सारी सृष्टि को जो अपने अनंत माधुर्य के रस में समेट करके रखता है, सबकी खबर लेता है, सबकी रक्षा करता है, सबको प्यार करता है, उस परमात्मा का प्रेम अपने को कैसे मिलेगा? ये साधना जो है वो किसके लिए है? घरवारी लोगों के लिए है, बाल बच्चेदार लोगों के लिए है, जीवन को आरंभ करने वालों के लिए है, समाज का काम करने वालों के लिए है। इसलिए इस साधना को आप आरंभ करिए तो उसमें क्या हो जाएगा, दुखी मात्र के दुख से करुणित होना, और बड़ी बड़ी बढ़िया बात है, सुंदर बात है, हृदय में जब करुणा का रस आता है तो सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है। तो अब आप सोच करके देखिए कि ममता, ममता के घेरे को तो तोड़ा नहीं, और शरीर से पैदा किए हुए लोगों के मोह के भीतर अपने को बांध के रखा, और साधन के समय पर अकेले में एक घंटा के लिए बैठ करके सुख भोग की रुचि को हटा करके मिटा करके उसके चिंतन को दबा करके भगवत चिंतन करना चाहते हैं, तो ममता के घेरे में बंधे हुए व्यक्ति के बस की बात है कि वो भीतर से निरस्ता को मिटा दे? नहीं मिटा सकेगा। संसार के चिंतन को हटा दे? नहीं हटा सकेगा। तो जबरदस्ती आंख बंद करके अकेले में बैठ करके मन की वृत्ति के साथ संघर्ष करना ठीक है कि दुनिया में रह करके हृदय के दायरे को बढ़ाना स्वाभाविक है? बढ़ा सकते हैं ना, तो आज ही से बढ़ाना शुरू कर देना, बहुत जल्दी लाभ दिखाई देगा, देर नहीं लगाना। क्या जाने ये मौका कब तक है, कोई कह नहीं सकता। आज जो शरीर में थोड़ा बल मालूम होता है, बुद्धि में थोड़ी समझ मालूम होती है, हृदय में थोड़ी उदारता मालूम होती है, परिस्थिति अनुकूल दिखाई देती है, आज ही अगर दिल के दायरे को बढ़ाने का प्रोग्राम हमने शुरू नहीं कर दिया तो कल क्या जाने प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, तो हम ही दया के पात्र बन जाएंगे, दूसरों की सहायता लेने के लायक बन जाएंगे, तब ये काम कैसे बनेगा भाई? तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास अनुकूलता आई है, बहती गंगा में हाथ धो लो, अपनी अशुद्धि को मिटाने के लिए तुम शुद्ध हो जाओ। तो दो बातें हुई, करुणा का रस मनुष्य के हृदय में आता है तो सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है। करुणा और प्रसन्नता मनुष्य के लिए इतना आवश्यक तत्व है कि इसके द्वारा बड़े जबरदस्त भव रोगों का नाश हो जाता है, इसलिए इसको उन्होंने पहला कदम बताया। अब उसके बाद अध्यात्म जीवन में प्रवेश करिए। हम लोगों को तो केवल दुनिया में कुशल से निर्वाह करने की बात ही नहीं है, इस दुनिया में कुशल से अपना निर्वाह भी करना है, और मरने से पहले दुनिया के बंधन से मुक्त भी होना है, वो भी तो एक काम है ना। संसार में हम रहेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भगवत नाते, आत्मा के नाते सबको अपना मानेंगे, दूसरों के दुख से हृदय करुणा से भरा रहेगा, दूसरों के सुख से हृदय प्रसन्नता से भरा रहेगा, ये तो दुनिया में रहने का तरीका हो गया। अब दुनिया के बंधन से मुक्त भी होना है तो अध्यात्म जीवन को आरंभ करो। इस सत्संग का जो स्थान बना है उसमें अध्यात्म भवन लिखा हुआ है। क्या मतलब है कि यहाँ आकर के हम लोग जो बैठते हैं तो अध्यात्म जीवन पर भी विचार करते हैं और उसमें भी अपने लोगों को प्रवेश पाना है। तो अब आध्यात्मिक विकास पर विचार करो। भौतिक दर्शन से जीवन का एक एस्पेक्ट हो गया, एक पहलू हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि राग द्वेष को छोड़ करके जो हमने अपने परिपार्श्व में दुखी जन के साथ अपना सुख बांटना पसंद किया, तो जिनके साथ हमारा संपर्क बना और जिनके प्रति सद्भावना ले करके छोटी से छोटी सेवा मैंने की, उनको अपना ही मान करके किया, उनको अपने प्यारे का प्यारा मान करके किया, ईश्वरवाद की दृष्टि से अपने प्यारे की प्रसन्नता के लिए किया, अध्यात्मवाद की दृष्टि से राग निवृत्ति के लिए किया, भौतिकवाद की दृष्टि से सुंदर समाज के निर्माण के लिए किया, तो किसी भी सही दार्शनिक दृष्टिकोण से जो भी कुछ सेवा अपने से बन पड़ी, छोटी से छोटी, जो मैंने जगत के प्रति अर्पित किया, उस सेवा के बदले में अपने को किसी प्रकार का कोई फल नहीं चाहिए, ये जरूरी हो गया। तो आप पैसे वाले हैं और उनकी सेवा में लगाने जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो की हुई सेवा के बदले में उनसे पैसे की आशा तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। लेकिन अपने भीतर अगर किंचित मात्र ऐसा भी ध्यान में आ गया कि इसकी गई सेवा से समाज में मेरी ख्याति हो जाएगी, अथवा जिनकी सेवा हम कर रहे हैं वे एक बार कृतज्ञता भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे, अगर इतनी भी आशा अपने भीतर रख कर के काम करने हम चले तो सही सेवा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कोई दुखी अगर आपकी सेवा से प्रसन्न होकर कृतज्ञता भरी दृष्टि से आपको देखेगा तो आप शरीर से संबंध रखेंगे तब ना उसकी दृष्टि का सुख लेंगे, ठीक है ना? तो शरीर का संबंध तोड़ने का प्रश्न जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई प्रशंसा सूचक शब्द कहेगा तो कान से संबंध रखेंगे तब उसको सुनेंगे, और देह का अभिमान भीतर रखेंगे तो प्रशंसा सूचक शब्दों से आनंदित होंगे। तो प्रशंसा सूचक शब्दों को सुनना और उसका सुख लेना अगर आपको पसंद आ गया तो देह के अभिमान से ऊपर उठना संभव होगा, और देह के अभिमान से अपने को ऊपर नहीं उठाया तो अविनाशी जीवन से अभिन्नता संभव होगी, निज स्वरूप का बोध संभव होगा, सच्चिदानंद मैं हूँ ये कथन सिद्ध होगा, नहीं होगा। तो भौतिक जीवन की विकसित दशा क्या है कि दुखी मात्र के दुख से करुणित होना, सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना। अध्यात्म जीवन में प्रवेश पाने का उपाय क्या है कि भाई जो भी कुछ यहाँ हम करेंगे उसके बदले में संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं रखेंगे, किसी प्रकार की आशा नहीं रखेंगे। तब क्या होगा कि करने के समय काम करेंगे आप, और काम करना खत्म होगा तो शरीर और संसार से बिल्कुल संबंध टूट जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, प्रयोग करके देख लीजिएगा, अगर किसी प्रकार का लगाव संसार के साथ रखो तो उसका चिंतन कभी नहीं टूटता है, और अगर संसार से कुछ न चाहो, कुछ अपने को उससे लेना ही नहीं है, तो संबंध रहता ही नहीं है, एकदम खत्म हो जाता है। न्यूरोलॉजी का पाठ हम पढ़ते थे तो उसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण हमको मिला था। एक एक यूनिट जो होता है मनुष्य के स्नायु का, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होता है, उसमें ऐसे जुटा हुआ कनेक्शन नहीं होता है। एक सुई यहाँ चुभ गई और सूचना एकदम जाकर के पेन सेंसेशन के सेंटर में पहुंच गई और आपको पीड़ा मालूम हुई और झट से आपने हटा लिया, तो पूरे सर्किट ने काम कर दिया। सेंसेशन ले जाने वाले नर्व ने पेन सेंटर में पहुंचा दिया, और मोटर ऑर्गन को चलाने वाले नर्व ने झट से उंगली को वहां से हटा दिया। तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के जितने यूनिट हैं सब एक दूसरे से अलग अलग पड़े रहते हैं, कोई स्ट्रक्चरल रिलेशन उनमें नहीं होता है, रचना की दृष्टि से उनमें संबंध नहीं होता है, सब एक अलग 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 यूनिट एक एक अपना पड़ा रहता है। और जब कोई संवेदना उनको यहाँ से यहाँ ले जानी है तो ये फंक्शनल रिलेशन कहलाता है, स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है। तो क्रियात्मक संयोग उनका बन जाता है, जब ले जाना हुआ, कंडक्ट करना हुआ, तो वे आपस में जुटते चले जाते हैं, सूचना पहुंचती जाती है। जब स्वामी जी महाराज के पास आकर के मैं और मेरे शरीर का संबंध सब मेरी समझ में आया तो मैंने कहा कि ये कोरा फंक्शनल रिलेशन है, स्ट्रक्चर का कोई संबंध ही नहीं है, मैं बना है अलौकिक तत्व से, शरीर और संसार बना है भौतिक तत्व से, दोनों में स्ट्रक्चरल रिलेशन त्रिकाल में भी हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि जब संसार को पसंद करो तो झट से फंक्शनल रिलेशन जुट जाता है, और संसार से काम लेना खत्म करो तो झट से संबंध टूट जाता है। इतना स्वाभाविक है, इतना स्वाभाविक है कि आपको किसी प्रकार का परिश्रम और अभ्यास बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं है। और पता नहीं साधना करने वाले, साधना सीखने वाले, सिखाने वाले, लिखने वाले, सुनाने वाले किस किस तरह का अभ्यास इतना फैला के रख देते हैं। अरे भाई, जिन शरीरों से तुमको अपना लगाव तोड़ना है उन शरीरों के आधार पर अभ्यास करते रहोगे तो वो अभ्यास जन्य साधना तुमको अशरीरी जीवन में पहुंचाएगा कैसे? ये बात समझ में आती है? तो महाराज जी ने क्या कहा आध्यात्मिक विकास के लिए? क्या करो कि समग्र दृश्य जगत से तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा, इस सत्य को स्वीकार करो। तुम हो अलौकिक, जगत है भौतिक तत्वों से बना हुआ, इसमें से जो मिलेगा वो सब शरीरों के काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। इसलिए संसार का दिया हुआ जो सामान तुम्हारे पास है वो संसार की सेवा में सब धन्यवाद अर्पण कर दो और उसके बाद अकेले हो जाओ। उसका दृश्य जगत से संबंध टूट जाता है। एक बार एक एग्जीबिशन देखने गए छात्राओं को लेकर के, छात्रावास में मैं रहती थी तो लेकर के गई देखने दिखाने, उनको दिखा उठा के चले आए तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ठहरे तो परसेप्चुअल टेस्ट होने लगा। तो बैठा करके सबको कागज पेंसिल दे देते हैं, 5 मिनट का समय दे देते हैं और देखना है कि किसको प्रत्यक्षीकरण की कितनी शक्ति है, परसेप्चुअल पावर किसमें कितना है। तो देख करके आ गए और लिख के दो कि तुमने क्या क्या देखा, तो किसकी दृष्टि अधिक से अधिक अपने वातावरण की वस्तुओं को ग्रास्प कर सकती है, देख सकती है, याद रख सकती है। मेंटल पावर का टेस्ट करने लगे हम, तो लिख लिख करके दिया। तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो लड़कियां थी ना, तो उनको सिलाई की दुकान और मिठाई की दुकान और रसोई की दुकान और ये बर्तन और ये कपड़े, यही सब दिखाई दिया। बहुत सी चीजें वहां पर थी जिसको उन्होंने नहीं देखा। ताकि भाई उस दुकान के बगल में ये भी तो था, तो नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। तो क्या है, क्या है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है वो आपके परसेप्चुअल फील्ड में ही नहीं आएगा। तो अगर दृश्य जगत से आप अपने लिए कुछ लेना नहीं चाहते हैं तो सच मानिए, जिस समय आप उससे लगाव तोड़िएगा उसी समय उसका चिंतन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो लगाव तोड़ना जरूरी है कि भीतर के चिंतन को निकाल कर फेंकने की चेष्टा जरूरी है? लगाव तोड़ना जरूरी है। अच्छा, अब और सोचो, लगाव रखने से संसार ने तुमको संतुष्ट कर दिया क्या? जी नहीं कर दिया। लगाव रखते रखते भी लगाव रखने का ये माध्यम जो है चिता पर जल जाएगा कि नहीं? जल जाएगा। तो लगाव रह गया, शरीर जल गया, क्या दशा होगी सोचो? यम यातना उसी का नाम मैं रखती हूँ, बाकी तो उस शब्द का अर्थ क्या है वो ज्यादा लोग जानते। लगाव रह गया और देखने की इच्छा रह गई और आंखें खत्म हो गई, स्वाद लेने की इच्छा रह गई और पाचन क्रिया खराब हो गई, शरीर से बाल बच्चों से चिपकने की वासना रह गई और शरीर चिता पर जल गया, कैसी भयंकर स्थिति है? उस भयंकर स्थिति से तो बचना है भाई, इसीलिए तो साधक बनने का प्रश्न है, इसीलिए तो सिद्ध होने का प्रश्न है, इसीलिए तो भगवत शरणागति की आवश्यकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सलाह दी कि अब उससे आगे उठो। तो आगे उठकर क्या करो कि तुम्हारे पास जो है इस जगत की सेवा में अर्पण कर दो और बदले में किसी से किसी प्रकार की आशा मत रखो। तो सच्ची बात है कि आप आशा छोड़ देंगे तो लगाव छूट जाएगा, आशा छोड़ देंगे तो चिंतन छूट जाएगा, आशा छोड़ देंगे तो संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, तो रास्ता खुल जाएगा आपका कि बाहर से सारी वृत्तियाँ सिमट करके अंदर हो जाएंगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे आप, और भीतर में एक ही केंद्र है, द मेन स्प्रिंग ऑफ लाइफ एक ही है, जीवन का मूल स्रोत एक ही है। तो जब जीवनी शक्ति को हम बाहर बाहर खर्च नहीं करेंगे तो वो अंदर में जाकर के बड़े वेग के साथ अपने मूल तत्वों में, अपने निज स्वरूप में जाकर के शामिल हो जाएगी और आप सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। तो ये विचार शक्ति के सदुपयोग का परिणाम है कि हम अपने लिए की हुई भलाई के बदले में संसार से किसी प्रकार की आशा न रखें। और अब मनुष्य के जीवन का तीसरा पहलू भी है कर्म, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति। तो हम लोगों को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, वो है भाव, प्रेम का भाव, श्रद्धा भक्ति विश्वास का तत्व, यह भी मनुष्य को मिला है। जैसे जैसे कार्य करने की क्षमता मिली है, जैसे भले बुरे पर विचार करने की शक्ति मिली है, ऐसे ही श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रेम ये सब भी मिला हुआ है। तो ये भाव पक्ष कहलाता है। तो इस भाव पक्ष का अब तक मैंने भूल मिश्रित उपयोग किया, इसलिए मेरे भीतर तरह तरह की आसक्तियाँ पैदा हो गई। अब हम अपने को साधक कहते हैं, अब हम अपने को सत्संगी कहते हैं, अब तो इस बात पर हम तुल गए हैं कि इस शरीर का नाश होगा पीछे और हम अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न होंगे पहले। इस बात के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं कि भाई हो गया, खूब खेल तमाशे देख लिए, खूब सुख दुख की लहरियों में डूबना उतराना सब देख लिया, अब तो यह इस जीवन का जो शेष भाग बचा हुआ है वह तो सब प्रकार से मुझे योग बोध प्रेम से अभिन्न होने के लिए है, शांति स्वाधीनता और सरसता से मिलने के लिए है। अब इस प्रकार का अपना निश्चय है, इस निश्चय के अनुसार काम करना है। तो इस निश्चय के अनुसार सलाह है अनुभवी संत की कि ये इसमें क्या करोगे तुम, तो ऐसा करो कि शरीर के नाते से नाता संबंध मानना छोड़ करके अब प्रभु के नाते से संबंध मानना आरंभ करो। ये सारा संसार, सारी सृष्टि चराचर जगत हमारे उस प्यारे प्रभु की ही अभिव्यक्ति है, ये सब उनको प्रिय है, ये सब उनके अपने हैं। तो मुझे अब क्या करना है, तो अपने भाव तत्वों को पवित्र करने के लिए देह का नाता मिटा करके भगवत नाते सभी के प्रति सद्भाव और प्रेम रखना है। यहाँ से आरंभ करेंगे तो मेरा संबंध किससे है, तो मेरा संबंध केवल एक से है, अनेक से नहीं है। अब ईश्वर विश्वासियों की दशा देखो, ईश्वर विश्वासी क्या कहते हैं, खूब मैंने सुना है महाराज जी के पास प्रश्न करते रहेंगे, स्वामी जी महाराज भगवान का भगवान को याद करने बैठो तो बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। तो महाराज जी कहते कि देखो भैया, जीवन में तुमने केवल भगवान का संबंध नहीं रखा है, 10 संबंध तुम्हारे पहले से थे और अब तुमने 11वां संबंध परमात्मा का मान लिया, तो जीवन में 1/11 परमात्मा की याद आएगी और 10/11 संसार का याद आएगा, ठीक है ना? तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए, अगर प्रेम तत्वों को विकसित करना है और उसे उस प्यारे प्रभु के लिए परम पवित्र बनाना है तो आसक्ति का दोष उसमें से निकाल देना पड़ेगा, और तो कुछ हुआ नहीं। प्रेम तत्व जो है वो तो ऐसा अलौकिक तत्व है कि आप कितने भी अपराध में फंस जाइए और कितने भी पतन के गड्ढे में चले जाइए, उस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता, हमारी भूलों से वो दूषित हो जाता है। तो उसके दूषण को मिटा देना बस इतना ही अपना पुरुषार्थ है और वो तो जो कहते हैं है, कभी मिटा ही नहीं, कभी मिटेगा ही नहीं। तो अपना संबंध रखना है एक से और सबके प्रति सद्भाव रखना है उस एक के नाते। तो भगवत नाते अगर जगत को अपना मानोगे तो भीतर में राग द्वेष का विकार पैदा नहीं होगा। तो ईश्वरवाद यहाँ से आरंभ होता है। हम लोग कहाँ से आरंभ करते हैं? सबकी चर्चा तो मैं कह नहीं सकती, कहना चाहिए नहीं मुझे, कहने का अधिकार नहीं है मुझे, अपने बारे में कहने का अधिकार है। और आप हमारे प्यारे प्रभु के प्यारे हैं, इसलिए आपको सुनाना मतलब उनको सुनाना। तो अपने रोग का इलाज भी करती हूँ मैं। तो हमने क्या किया है, तो हम क्या करते हैं कि भगवान का एक चित्र सामने रख लिया और विविध प्रकार की क्रियाओं से, तरह तरह के उपाय से हम अपने को उनके प्रति प्रेम भाव को प्रकट करने के द्वारा पवित्र बनाना चाहते हैं। तो विविध संबंधों का त्याग नहीं किया, तो सामने चित्र रख लो तो, विग्रह रख लो तो, और बहुत सामग्री जुटा लो तो, और बहुत देर तक विधि विधान से पूजन करो तो, एक संबंध अगर जीवन में नहीं है तो वो सजीव नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ करके पूजा करना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद ध्यान में आता है कि जल्दी जल्दी खत्म करके चलो, अभी और दूसरे काम है। फिर क्या होता है, तो मैंने ऐसे संतों के पास बैठकर देखा है और अपनी दशा को देखा है, और बहुत सुंदर चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, जो जिन्होंने एक प्रभु से नाता जोड़ा। जैसे मीरा जी ने कहा ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, दूसरा कोई मेरा है नहीं। तो जिन्होंने एक प्रभु से नाता जोड़ा, वे जब पूजा करने बैठते हैं और उनके प्रभु का प्रेम उनके हृदय में भरता है, तो पूजा करते करते वे अपने को भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। तो क्रिया खत्म हो जाती है और वे भाव के स्वरूप में होकर के प्रेमास्पद से जुट जाते हैं, देह धर्म वही छूट जाता है। मैंने अपनी दशा क्या देखी है कि पूजा करते करते दूसरी कोई बात याद आ गई, कोई दूसरा काम याद आ गया, तो पूजा के आइटम्स को भूल जाती हूँ। अंतर मालूम हुआ? एक एक भाव में इतना रस उमड़ा कि उसमें अहम डूब गया, मैं बन रहा नहीं, प्यारा रहा, प्यारा का प्यार रहा, प्रीतम रहा, प्रीतम की प्रीत रही, मैं खत्म हो गया। तो जिस मैं के भेद की दीवार के कारण उससे हमारी दूरी मालूम होती थी, वो अहम जो है वो प्रेम के धातु में मिल गया।